نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ان شاء الله تعالى آج سورة البقرة آیت نمبر 60 سے 64 تک ہم کریں گے. ہم نے پچھلے لیسن میں کچھ چیزیں پڑھی ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں. ہم نے دیکھا کہ کس طرح بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا جو ان کے لیے فرقان بنا کے بھیجی گئی تھی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی فرعون سے، کس طرح اس کے ظلم سے، اور ان کو کتنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. پھر بھی جب موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے تور سے کتاب لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، تو آگے ان کا حال کیا دیکھا کہ بچھڑے کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے تھے. اور اس کی جو ان کو کفارے کے طور پہ ان کو کہا گیا وہ کیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں. اس کے بارے میں ایک سوال آیا تھا کہ یہاں پہ کیوں کہا گیا انکم ظلمتم انفسکم، اور آگے وہ تو چلو اپنے نفسوں پر ظلم کیا، فقتلوا انفسکم، اس کا سوال آیا تھا کہ بس قتل کرو اپنے نفسوں کو، تو اس سے تو مراد ہے اپنے آپ کو قتل کرو، تو پھر آپس میں کیوں قتل کرنے کو کہا گیا. آپ یہ یہاں پہ ہی نہیں ہے، آپ آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اس سورہ میں بہت جگہ اس طرح آئے گا، تم نے نکالا اپنے نفسوں کو اپنے گھروں سے، تم نے قتل کیا اپنے نفسوں کو. اپنے نفسوں کو جب قتل کرنے کا مطلب تو خودکشی کرنا نہیں آیا یہاں پہ، بلکہ یہ جو انسان کا کنبہ، قبیلہ، اپنا خاندان ہے نا، وہ بھی اس کا نفس ہی ہے. کیا وہ اس کی جان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا وہ ایک خون نہیں ہے؟ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں یہاں پہ کہا گیا کہ اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو، یعنی آپس میں اپنے نفسوں کو قتل کرو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی اور پھر انہوں نے ان کے جو بڑے بزرگ تھے انہوں نے کس طرح سے جا کر وہاں پر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی ڈیمانڈ کر دی، جس پر ان کو موت دے دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے اوپر اللہ نے نازل کیا منو سلوا، اور کیسے بادلوں کا سایہ ان کے اوپر رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں عطا فرمائی ان کا سب ذکر ہے، اور پھر کیسے 40 سال یہ تیہ کے میدان کے اندر پریشان رہے، لاسٹ رہے، اور اس کے بعد جب ان کی نئی نسل آئی، وہ پروان چڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں. لیکن اس پہ بھی انہوں نے کیا نافرمانی کی، کس طرح سے حتت ان کا تھا تو کیسے انہوں نے اس کا ایک مذاق بنا لیا اور اس کو بدل دیا، اور ان کے اوپر پھر پلیگ کی بیماری اللہ تعالیٰ نے بھیجی جس سے ہزاروں مر گئے. اور آپ نے اس پچھلے سبق میں یہ بھی دیکھا ہوا کہ اندھی تقلید کا انجام کیا ہوتا ہے، کیسے وہ دیوانوں کی طرح بالکل بلائنڈ فالوئنگ کرتے ہوئے سامری کے کہنے پر بچھڑے کو پوجنے لگے، حالانکہ پیغمبر ان کے اندر موجود تھے، ان کو سب چیزیں بتائی ہوئی تھیں، پتہ تھا ان کو یہ صحیح نہیں ہے بات، اللہ کو سمجھتے تھے، جانتے تھے، پھر بھی انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی. صرف بلائنڈ فالوئنگ کا انجام آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اندھا بن کے کسی کے پیچھے لگ جانا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا. آج بھی آگے ہم دیکھیں گے یہی بات ابھی چل رہی ہے، اور اس پارے کے اینڈ تک ان کے قصہ چلتا رہے گا. مختلف طرح سے ان کے بارے میں بتایا گیا 2000 ایئرز تک. اب وہ پتہ ہے یہ امامت کے مقام پر فائز رہے، یعنی پچھلی، ہم سے پچھلی امت مسلمہ جو تھی نا، ये बनी इसराइल थे। एक और सवाल आया था कि बनी इसराइल, जो मैंने कहा है कि बनी इसराइल के पास ही किताबें आई, तो कैसे वो, क्योंकि तौरात जबूर इंजील इन्हीं में आई। मूसा अलैहि सलाम तो आए थे, ईसा अलैहि सलाम भी इन्हीं में आए थे, दाऊद अलैहि सलाम भी इन्हीं में थे। ठीक है, आप आगे जाकर पढ़ेंगे सूरह मायदा में ईसा अलैहि सलाम के बारे में, और तो आपको और भी बातें पता चलेंगी। ये तो अब भी 2000 साल तक ये इमामत के मनसब पर फाइज रहे, और 1400 साल तो इनमें ऐसे गुजरे थे जब कोई वक्त ऐसा नहीं था जब कोई नबी ना हो इनमें, हर वक्त कोई ना कोई नबी होता था। ठीक है, और हम देखेंगे भी कि नबियों के साथ इनके सलूक फिर कैसे थे। सिर्फ ईसा अलैहि सलाम के बाद फिर इनके पास कोई नबी नहीं आया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए, जो कि फिर बनी इसराइल से नहीं थे। ये तो आखिरी नबी जो इनके पास आए वो ईसा अलैहि सलाम थे। अब देखिए, हमें तो 1400 साल ही हुए हैं इस मनसब पर फायज हुए हैं, इनको तो 2000 साल मिले। क्या अब अल्लाह ताला जो इनकी बातें यहाँ पे बता रहे हैं, इनका मकसद है। ये जो सवाल अगर मैं आपसे करूँ, बहुत जगह पे ये सवाल किया जाता है कि ये उम्मत मुस्लिमा के आज जो जवाल की, जो पस्ती की वजूहात हैं वो बयान करें, वो बताएं। आप में से शायद कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा जी हमारा ईमान नहीं है वो, कोई कहेगा जी हमने तालीम के ऊपर तवज्जो नहीं दी, कोई कहेगा कि हम फिरका वारियत में पड़ गए, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। लेकिन आपको दिखाया गया है पिछली उम्मत मुस्लिमा के किरदार और उनके जो आमाल थे उससे, कि क्या बातें वजह बनती हैं अल्लाह के गजब की, क्या चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से कोई भी उम्मत अल्लाह की नजरों से गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर दुनिया में भी रुसवाई और जिल्लत आती है। वो आज के सबक में हम देखेंगे और आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि हमारी भी वजूहात क्या हैं, क्योंकि जब तक वजह ना पता हो उसको दूर कैसे किया जा सकता है। अगर आज हमें फिक्र है, पता नहीं फिक्र सब लोगों को होती भी है या नहीं होती, मगर अगर किसी को फिक्र है ना कि ये क्यों जवाल है, क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है, क्यों हम पस्ती में जा रहे हैं और दिन ब दिन नीचे ही जा रहे हैं, कोई ऊपर के कोई अच्छी कोई उरूज की खबर नहीं हमें मिलती, हमें दिन ब दिन यही पता चलता है कि पिस रहे हैं, लुट रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं, यानी इंतहा हो गई है, गिरने की भी इंतहा हो गई है। फिर दिल तो दुखता है मगर कुछ समझ नहीं आती कि क्या वजह है, कहाँ से कौन सी कल पकड़े, कैसे तसहीह हो सकती है, कैसे सीधा किया जा सकता है अपने आप को। यही तो हमें सिखाया जा रहा है यहाँ पे। ये कोई ऐसे नहीं है कि बस हम कहानी के तौर पे पढ़ लें, अच्छा, वो बनी इसराइल ने तो ये किया, अच्छा सबक खत्म हो गया। जो लोग वाकई सोचते हैं ना उम्मत के लिए, उनके लिए है ये आयात, उनके लिए नहीं है जिनको अपनी बस पड़ी हुई है, हमारी दुनिया ठीक हो जाए, बाकी जाए जहां पे मर्जी, उम्मत जो लुटे या कटे हमें क्या, वो तो वो हैं इसलिए वो, हम फलां कौम से हैं, वो फलां कौम से, हमें उनसे क्या, हमारी नेशनैलिटी ये है, हमें उनसे क्या, होते होंगे जो मर्जी उनके साथ होता रहे, क्या वजह बनती है। कभी इसके ऊपर बैठ के सोच विचार करते हैं, वो क्या कैसे निकलेंगे, क्या क्या चीज है जो निकालेगी, कभी ये फिक्र होती है, जैसे अपनी फिक्र होती है, अपने बच्चों की फिक्र होती है, इस तरह उम्मत की कभी फिक्र होती है। अगर फिक्र है ना तो ये आयात आपके लिए, और अगर फिक्र नहीं है तो फिर डोंट केयर, जो होता है होता रहे, आखिर दुनिया ने एक दिन खत्म तो होना ही है ना, ऐसे ही खत्म होगी। चल अच्छा है, लुटे पुटे इनको मार पड़े फिर ही सीधे होंगे, बाज लोगों का ये भी नुकता नजर होता है। तो ये वो उम्मत है जिसके लिए हमारे नबी रोए हैं रातों को, ये वो उम्मत है, इसका गिरना हम सबका गिरना, और इसका उठना हम सबका उठना, इसकी फिक्र आपके नबी की फिक्र है। ठीक है, ये ऐसे ही फालतू नहीं है बात, ये फिक्र वो है जो आपके नबी को लगी थी कि अल्लाह को तसल्लियां देनी पड़ी है, नबी आप ना इतनी फिक्र करें। तो इसलिए ये हम सबका मसला है, ये कोई किसी कौम का, किसी एक फर्द का मसला नहीं है, किसी एक मुल्क का मसला नहीं है, हम सब का मसला है। तो मसले से निकलेंगे कैसे, देखें फिर आए रात को। और कोई भी ये ना सोचे, हम तो औरतें, तो हमने ये मुसीबत पड़ी, दिमाग में समझा ली अपने आप को कि हम तो औरतें, हम क्या करेंगे, लो हमसे क्या होता है। चलो वहीं बैठ गए, कहानी खत्म। हमसे क्या होगा, हमसे क्या होता है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, वो पता है जो बारिश होती है ना, वो किससे बनती है, कतरे कतरे से। बारिश कोई बहुत बड़ी बाल्टी नहीं आसमान से फेंकी जाती, एक एक कतरा होता है बारिश का, जिससे तूफान आ जाते हैं। एक एक कतरा बारिश का होता है जिससे सब्जा उगता है। तो वो हर कतरा अगर ये सोचे मेरे से क्या होगा, मैं तो एक कतरा हूं, मेरे से क्या बनेगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही उम्मत उठेगी। इन्हीं इन आयात का और ये सीखने का और ये समझने का मकसद यही है कि हम अपनी जिंदगियां भी संवारें, अपने घरों को भी संवारें, और हर घर जब संवरेगा तो उम्मत की तकदीर बदल जाएगी। हमें भी अल्लाह दिखाए वो दिन जब ये उम्मत प्राउड होके खड़ी होती है और कहती है हम मुसलमान हैं, देखो दुनिया, हाँ मैं मुसलमान। मुसलमान ऐसा होता है, ये नहीं कि किधर जिधर जा रहे हैं उधर ही जलील हो रहे हैं, जिधर जा रहे हैं उधर ही मार खा रहे हैं। तो देखते हैं आयात आज की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला तुझसे दुआ है कि इन आयात से हमें सीखने वाला, समझने वाला बना दे। हमारी आंखें खोल अल्लाह, हमें राह दिखा अल्लाह, हमें बता, हमारी रहनुमाई फरमा इस कुरान के जरिए, कैसे बदलना है और कैसे तकदीरें बदलेंगी, कैसे इस उम्मत की सुबह होगी। अल्लाह हमें दिखा, हमें जरिया बना। वइज़ इस्तस्का मूसा लिकौमिही फकुल नद्रिब अस्फाकल हजर। जब पानी मांगा मूसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम के लिए, ये कब का वाक्य है जब मूसा अलैहि सलाम ने कौम के लिए पानी मांगा, ये जब कौम गुजर के आई, उस दरिया को पार किया या समुंदर को पार किया और आए, तो वो एक जगह पर आए। अब आगे ना पानी था, ना पीने को कुछ, ना कुछ। ये अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, पहले भी बताया था कि तारीखी तरतीब के मुताबिक नहीं है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है कि वो तो अभी हमने पढ़ा था कि वो तो शहर में दाखिल हो गए, अब ये कहाँ से आ गया। नहीं, अब ये शुरू की बात है, इसलिए कि ये कोई स्टोरी की तरह नहीं चल रहा, बल्कि हमें बताने के लिए, समझाने के लिए वाकयात दिए गए। पहला वाकया बाद में हो सकता है, बाद का पहले हो सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये लोग एक जगह पे, ये भी आता है इनकी किताबों में कि ये लोग इस कदर डेस्परेट हो गए पानी के लिए कि इन्होंने मूसा अलैहि सलाम से कहना शुरू कर दिया, तो इससे पहले ही हम मर जाते और ऐसे हो जाता, हमें यहाँ पे लाके आपने मारना था, हमें किधर ले आए, आपने तो कहा था हमें फलों की जमीन पे लेकर जा रहे हैं, ऐसे लेकर जा रहे हैं, हम यहाँ पे मरने लगे हुए हैं। अब देखिए कितना एक बड़ा मूसा अलैहि सलाम के लिए भी बार बार ये एक चैलेंज खड़ा कर देते थे कि ये आपने क्या कर दिया, कभी समुंदर आ गया तो कह रहे हैं मूसा हमें यहाँ ले आए। तो इन्होंने पानी मांगा मूसा अलैहि सलाम से, तो मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह से दुआ की, दुआए इस्तस्का ना, सलात इस्तस्का हमारे यहाँ भी होती है, पानी मांगना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ की है, आपके बाद भी ये दुआ की गई। जब भी कोई ऐसी कहत साली की सिचुएशन आई, जब भी पानी की कमी हुई, तो हमें ये सिखाया गया है। तो जो बारिश है ना, वो अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है। बाज दफा हम, बारिश 2-3 दिन हो जाए ना, तो हम इतना मुंह बनाते हैं, मौसम कितना खराब है, इतना गंदा मौसम है, ऐसे करते हैं, हालांकि हम ये नहीं सोचते कि ये कितनी बड़ी रहमत है। इसके लिए तो पैगंबरों ने दुआ की है, क्योंकि ये बारिश है तो पानी है, तो सब्जा है, तो जिंदगी है। और आप देखें कई खित्ते इस दुनिया में ऐसे हैं, कई ममालिक ऐसे हैं जहां पे लोग पानी को तरसते हैं, और बारिश अगर किसी दिन हो जाए ना तो उनके बच्चे बाहर निकल के इतनी खुशियां मनाते हैं कि शुक्र है बारिश हो गई। और हमारे बारिश हो जाए, इंसान ना शुक्रा इतना ज्यादा है, हमें बारिश मिल जाए तो गंदा मौसम, अच्छा ना शुक्री तो इंतहा ही है ना, जरा सी गर्मी हो जाए हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय 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 हाय, जरा ठंड हो जाए हाय सर्दी, हाय स्नो हो जाए हाय स्नो। कोई हाल में हम खुश भी हैं, कभी राजी भी होते हो कि अल्लाह तुमने मौसम ये कर दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है, इसमें भी खैर है, ये बारिश है अल्लाह इसको खैर का हमारे लिए बनाना, अगर सर्दी है अल्लाह इसको खैर की लाना। एक होता है वैसे कहना कि मुझे सर्दी लग रही है, या एक है हर वक्त एक शिकायत एक शिकवा जुबान पे रखना, ऐसा क्यों मौसम हो गया, ऐसा क्यों हो गया, यानी जब मैं ही बस इस कायनात का सेट करूं थर्मोस्टेट कि कैसा होना चाहिए। अल्लाह की मर्जी है, उसका मुल्क है, वो जैसा चाहे करे ना, ये कायनात उसका मुल्क है, उसकी बादशाहत है, बादशाह जैसे चाहे करे, कभी ये नहीं सोचते, वो जैसा चाहे करे, हमें क्या इस चीज को पर ऑब्जेक्ट करने का इख्तियार है, कोई है इख्तियार हमारे पास? लेकिन फिर भी आप देखें रोज हम मौसम के ऊपर इस किस्म के तबसरे कर रहे हैं। तो यहां पे देखें कि जब मूसा अलैहि सलाम ने पानी मांगा अपनी कौम के लिए, फकुलना तो हमने कहा, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली, हमने क्या कहा, इद्रिब बि असाकल हजर, मारो अपना आसा इस पत्थर को, मारो अपना आसा पत्थर को। उन्होंने तो बारिश की दुआ की, उन्होंने तो पानी मांगा, उन्होंने तो कहा अल्लाह हमें पानी दे दे ये, और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, पत्थर पे अपना आसा मारो। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा नहीं कि अल्लाह पत्थर पे आसा मारने की क्या, मैं तो पानी मांग रहा, नहीं, क्या पैगंबरों का तरीका आप सीखते हैं, ये सीखते हैं हम पैगंबरों से कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आगे से सवाल नहीं है, अल्लाह इसमें क्या हिकमत है अल्लाह पहले बताएं, क्योंकि आज हमारे अंदर ये चीज बहुत कॉमन हो गई, हम अपने आप को अकले कुल समझते हैं कि हमारी बस अकल सबसे कंप्लीट है, हम जो है जिस तरह से हमें समझ आती है, अगर हमें कोई बात नहीं समझ आ रही ना तो इसका मतलब ये बात ही सही नहीं, जो समझ आती है वो सही है। अब वो कोई डॉक्टर आपको कहता है इतनी सी छोटी सी गोली है ये खा लेंगे आपके सर में दर्द ठीक हो जाएगा, तो हम मान लेते हैं, हम नहीं पूछते उसे लो इतनी छोटी सी गोली कैसे मेरा सर दर्द ठीक करेगी। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला के हर हुक्म के ऊपर हम आगे से सवाल लेके खड़े हो जाते हैं, ये कैसे होगा, ये क्यों है, ऐसा क्यों कहा गया, पहले तो हमें हिकमतें समझाई जाए, अब कोई फरिश्ते उतरे हिकमत समझाने के लिए, बास चीजों की समझ आती है बास की नहीं आती, लेकिन आप फिर भी यकीन करते हैं, डॉक्टर की बात पे यकीन करते हैं, वेदर कोई बता रहा है उसके ऊपर यकीन करते हैं, और कुछ और चीजें साइंटिफिक फैक्ट्स बताता है हम यकीन करते हैं, उसने कह दिया कि भाई साइंस ने कि भाई जमीन घूमती है हमने यकीन कर लिया, देखा आपने जा देखा किसी ने, घूम रही है सूरज के गिर्द घूमती, हमें क्या पता, क्या क्या पता सूरज ही इसके गिर्द घूमता, नहीं हम मान लेते हैं, वो उन्होंने उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहां से बताया, उन्होंने मुझसे देखा, तो हम देख के आए हैं क्या, नहीं, लेकिन मानते हैं ना, फिर अल्लाह की बातों को क्यों नहीं ऐसे मानते कि बस आंखें बंद करके कहें अल्लाह जो तूने बता दिया वही ठीक है, और ये देखें यही पैगंबरों का तरीका। मूसा अलैहि सलाम से क्या कहा गया, अपना आसा अब मारें आप पत्थर को, एक कोई खास पत्थर था कहा जाता है उसके ऊपर कहा गया इसको मारे, फन फजरत तो फूट पड़े, मिनहू इससे इतना ताशरत आईना 12 चश्मे, इब्ने कसीर में है कि ये पत्थर था जिससे चश्मे फूट पड़े, और आदमी अगर खड़ा हो जाता था, यानी उनके 12 कबाइल थे एक्चुअली, उसकी वजह से 12 चश्मे फूटे, एक नहीं फूटा, क्योंकि अल्लाह ताला नहीं चाहते थे कि आपस में लड़े, आपको पता ना पानी के पीछे तो बहुत लड़ाइयां हो जाती हैं खास तौर पे जिस जगह पानी ना मौजूद हो, तो अब इनको अलग अलग चश्मा दिया गया ताकि हर कबीला सेटिस्फाइड रहे, उनको कोई परेशानी ना हो, और ये हर कबीले को अपना अपने पानी की जगह पता चल गई थी। कद आलिमा कुल्लू उनासे मशरबों, हर एक को पता था कि हमारी जगह कौन सी है, क्योंकि वो पानी उसके आगे पत्थर के आगे खड़े हो जाते थे और जो फिर उसमें से पानी निकलता था उसको उसको पता चल जाता था कि ये हमारा है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी जगह जान ली थी कि कौन सी हमारी मेरी जगह है, कौन सी दूसरे कबीले की जगह है, कौन सी तीसरे कबीले की जगह। और इस पत्थर को ये लेकर रख लिया करते थे अपने साथ सवारी में। ये इब्ने कसीर में आता है कि सवारी पे साथ रख लेते थे पत्थर को, इसमें से नहरें निकल यानी समझ ले चश्मे निकलते थे ना, तो जिस वक्त उठा लेते थे इसको तो वो बंद हो जाते थे चश्मे, साथ रख लेते थे। ये पत्थर इनके साथ साथ ही रहता था। तो कितना अच्छा अल्लाह ताला ने इनके लिए इंतजाम कर दिया, वरना आपको पता है कि ऐसी जगहों पे पानी का मिलना कितना मुश्किल है कि जहां पे कुछ भी नहीं दूर दूर तक। कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह, और अल्लाह ताला ने इनसे क्या फरमाया, खाओ और पियो अल्लाह के रिस्क में। वला तअसौ फिल अर्दी मुफसिदीन, और अल्लाह की जमीन में फसाद फसाती बन के फसाद करते ना फिरो। यानी क्या मतलब के खाओ और पियो अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से, खाओ और पियो यानी कोई पाबंदी नहीं है कि कुछ खाना नहीं खा सकते या इतना खाओ नहीं, जो अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया उसमें से खाओ पियो। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने इससे नहीं मना किया कि आप कभी खाना ही ना खाएं। जैसे बाज दफा लोग इसको भी नेकी परहेजकारी समझते हैं कि हम बहुत ही कम खाते हैं, हम तो कोई खाना खाते ही नहीं है, हम तो एंजॉय ही नहीं करते कभी खाने को या कुछ है नहीं। फरमाया खाओ पियो, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमाया कि इसराफ ना करो, हद से ना बढ़ो। खाने पीने से नहीं मना किया, ये नहीं कहा गया भूखे रहा करो, ये नहीं कहा गया पानी ना पिया करो, रोज रोजा रखा करो, ऐसे नहीं कहा गया। खाओ पियो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आपको हलवा और शहद पसंद था। हलवा, हलवा से मतलब क्या, अरबिक में हलवा कहते हैं डिजर्ट को, मीठी चीज को, ठीक है। अब हमारे यहाँ बेचारों ने समझ लिया कि हलवा का मतलब हलवा ही है, तो वो हलवे पका पका के रबीउल अव्वल में जो लोगों को देते हैं कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलवा बड़ा पसंद था। हलवा नहीं भाई, मीठी चीज, हलवा मीठी चीज के लिए कहा गया। तो खाने पीने को कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, हाँ बस बताया गया कि तय्यबात खाओ, पाकीजा चीजें खाओ, हलाल चीजें खाओ और इसराफ ना करो, बस ये बताया गया। तो इसमें कोई नेकी ना समझे कि हम बहुत नेक हैं, हम तो कुछ खाते ही नहीं, हम खाना पीना पसंद ही नहीं करते। लेकिन क्या कहा गया साथ, लेकिन तुम फसादी ना बनो। फसाद किससे, यानी किसी पे जुल्म ना करो, ज्यादती ना करो, करप्शन ना करो जमीन में, नाशुक्री ना करो, बेसब्री ना करो, हिर्स ना करो, ये सारी चीजें फसाद में आती हैं। और ये किस लिए होता है, जिस वक्त के इंसान देखें जमीन में ज्यादतियां करने लगता है, हकूक गसब करने लगता है ना दूसरों के, दूसरों को तकलीफ देता है, तो फसाद बरपा हो जाता है। और जब फसाद बरपा हो जाता है तो ऐसी जगह पे सकून नहीं रहता, ऐसी जगह पे अमन नहीं कायम हो सकता। और जब ये भी एक रिपल इफेक्ट होता है, जब एक शुरू करता है तो दूसरा दूसरे से तीसरा हकूक मार रहे हैं, खुद को बड़ा समझ रहे हैं, मुतकब्बिर हो गए हैं, हिर्स है, तो ऐसी सोसाइटी कि में किस कदर बेचैनी होती जहां पे ये चीजें हो। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं आगे, अगली आयत देखते हैं, 61 लंबी आयत है। वह इद कुल तुम, और जब कहा तुमने, या मूसा, ए मूसा, पहली बात तो देखें कि वो मूसा अलैहि सलाम को मुखातिब कैसे करते हैं, या मूसा, जैसे पता नहीं किसी बच्चे को कह रहे हो ए मूसा, नहीं उनके पैगंबर हैं ये। लेकिन उनकी जो आप अदब देख रहे हैं, ये कैसा है, सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पुकारते थे, या रसूल अल्लाह, कोई नहीं कहता था या मोहम्मद, ऐसे नहीं पुकारते थे। बद्दुओं ने कुछ ने आके इस तरह से कहा तो अल्लाह ताला ने कुरान में मना फरमा दिया कि ऐसे ना ही पुकारो नबी को जैसे तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। तो ये अदब नहीं है नाम लेके पुकारना, देखिए, हम भी अपने बड़ों को, अपने माँ बाप हैं या अपने असातिज़ा कराम हैं या अपने बुजुर्ग होते हैं जिनको हम बड़ी इज्जत देते हैं, हम उनके नाम ले लेके नहीं उनको पुकारते। ये तो अब ये इन मुल्कों के अंदर तो हर एक का ही नाम ले लेते हैं, लेकिन वैसे हम देखें हमारी जो इस्लामी तहजीब है ना, उसमें बड़ों के नाम नहीं लिए जाते। लेकिन उनका देखें अखलाक क्या था, या मूसा, और आगे क्या कहते हैं, लन नसबिर आला तो आम वाहिदिन, हमसे नहीं सबर होता एक खाने पे कि हम रोज एक ही खाना खाते रहे, अब हम तो बोर हो गए खा खा। क्या था खाना उनके पास, याद है आपको कुछ पिछले सबक से, मन और सलवा। तो अब कहते हैं हमसे नहीं वो रोज रोज खाया जाता, फदउ लना रब्बका, आप बस आप दुआ करें हम हमारे लिए अपने रब से, युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्द, कि वो निकाले हमारे लिए जो जमीन उगाती है। कौन सी चीजें जो जमीन उगाती है, मिम बकलीहा व किस्ताईहा व फूमीहा व अदसीहा व बसरीहा, इतनी लिस्ट भी दे दी, सब्जी और खीरे और लहसुन और दालें और प्याज, हम तक इससे मजे मजे की हंडियां बनाएं चटखारे लें, ये क्या अब हमसे रोज मन और सलवाई हम खाते रहे, ये तो हम बोर हो गए। अब आपको ना इससे एक कौम की मेंटेलिटी पता चलेगी कि उनकी क्या मेंटेलिटी है, उनकी मेंटेलिटी क्या है। नंबर वन, उनके अंदर मुस्तकिल मिजाज ही नहीं, उनके अंदर ये नहीं अब हम इससे बोर हो गए, अब हम उससे बोर हो गए, अब ऐसे नहीं। जिस कौम को अल्लाह ने कोई इतना आला मनसब दिया हो कि अल्लाह ताला ने फरमाया तमाम जहान वालों पे तुम्हें फजीलत दे दी, उसका क्या ये काम है कि वो ये कहे हमें तो ये खाना नहीं चाहिए, अभी हम वो खाना चाहिए, हमें तो ये वैरायटी चाहिए। वो भाई तुम्हें कितने बड़े मकसद के लिए अल्लाह ताला ने फाइज किया है, तुम्हें उसकी तैयारी कराई जा रही है, तुम्हें आगे कहा जा रहा है आप बैतुल मकदस जाओ उसको फतह करो, तुम्हें इज्जत मिले, फिर तुम इस दीन को लेके खड़े हो, इसको पहुंचाओ दुनिया तक, इस तौरात को लो और इसको पहुंचाओ दुनिया तक, फिर और तुम इसके अलम बरदार बनो, इसके रिप्रेजेंटेटिव बनो, दुनिया तुम्हें देख के इस दीन को पाए और समझे, क्योंकि ये उम्मत है मुस्लिम। समझ लेना कि वो उस जमाने में अगर आप बैक इन द पास्ट चले जाएं तो उम्मत मुस्लिमा ये थी, ठीक है। अब वो उम्मत मुस्लिमा ये अल्लाह के दीन की नुमाइंदा उम्मत है, तुम खड़े हो, तुम पहुंचाओ, तुम किस कामों के अंदर लगा, नहीं हमें ये नहीं चाहिए हमें वो चाहिए, तुम्हारा तो ये मकसद ही नहीं है। और फिर खुद ही कह रहे हैं लन नसबिरा, हमसे सबर नहीं होता, यानी बेसब्रे लोग थे, कनात नहीं थी इनके अंदर, सबर नहीं था इनके अंदर कि हम, ये भी एक सबर है ना, सबर सिर्फ गमों पे नहीं होता, मैंने आपको बताया था, ये भी सबर है कि हमें ये मिल रहा है खाने को अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये रे असल तो हमें काम कुछ और करना है ना, हम ये करने तो नहीं आए। दूसरा आप देखें कह रहे हैं फदुलना रब्बा का, अपने रब से दुआ करो ना, तो तुम खुद दुआ करो, क्या किसी को दुआ के लिए कहना गलत है, सहाबा भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ के लिए कहा करते थे, या रसूल हमारे लिए दुआ कीजिए, दुआ करना किसी से ये गलत नहीं है, कहना कि आप दुआ करें हमारे लिए ये गलत नहीं है, लेकिन जब ऐसे कहा जाए कि खुद तो नहीं कुछ करना, बस आप ही हमारे लिए दुआ करना, जैसे आपने देखा होगा मसलन किसी को कोई मसला होता है ना, तो बाज दफा लोग क्या करते हैं आयत करीमा आके हमारे घर पढ़ते हैं, अब वो बुला लेंगे औरतों को, अब औरतें बैठी हुई आयत करीमा पढ़ रही हैं, और जो जिनके ऊपर मसला है वो किचन में बर्तन धो रही है, वो तैयारी कर रही है कि अब इसको उनको खाना जो देना है, वहां पे बातें हो रही हैं, वो तो अपनी मसला उनका है, लोग आके आयत करीमा पढ़े, तो आप ही हमारे लिए दुआ कर लें, हम तो नहीं कर सकते, या फिर किसी मदरसे में देख भिजवा देते हैं कोई बच्चों के लिए किसके लिए, और वहां पे कहते हैं अब दुआ करा दें। सबसे पहले तो खुद दुआ करनी चाहिए, किसी को भी कहने से पहले खुद अपने लिए दुआ करें, क्योंकि जैसे आप अपने लिए खुद दुआ कर सकते हैं तड़प के, और कोई नहीं कर सकता। अगर मसलन है किसी के दांत में दर्द है, जैसे वो अपने लिए तड़प के दुआ करेगा, किसी को भी आप कह देंगे वो नहीं करेगा। आप वो खुद पेट में दर्द है, आप अपने पेट को पकड़े बैठे, जैसे खुद आपके दिल से निकलेगी ना दुआ, वो किसी कोई और नहीं कर सकता। तो इसलिए अपनी परेशानी के लिए पहले आप खुद दुआ करें, ये नहीं कि हमसे, हमें तो आती ही नहीं दुआ करनी। और यहां से पता चलता है कि उनका रिलेशनशिप अल्लाह ताला के साथ कैसा था, रब्बा का तो तुम्हारा क्या, रब नहीं है वो? आप अपने दो अब रब से दुआ करें तो तुम्हारा भी तो वही रब है, तुम क्यों नहीं करते? रब्बा का कहने से पता चला कि वो अल्लाह के साथ कोई कनेक्शन बॉन्डिंग नहीं रखते थे, और आज भी किसी को दुआ करने के लिए वो कहते हैं हमें आती नहीं दुआ करने, हमें तो समझ ही नहीं आती दुआ कैसे करें। इसका मतलब है आपने कभी अल्लाह से बात ही नहीं की, आपने कभी अपनी अपनी जो अपना गम है, जो अपनी परेशानी है, अल्लाह के आगे रखी ही नहीं। ये भी एक कनेक्शन की बात है दुआ करना, ये भी ऐसे नहीं हो जाता। अब हमें टाइम खुद ही नहीं मिलता दुआ करने का, तो हमें आता ही नहीं है। अब कोई करा दे तो हम पीछे आमीन कहते रहे तो वो अच्छा लगता है, तो खुद नहीं आता। तो सीखे, अगर नहीं आता तो हमें समझना चाहिए। तो कोई बच्चा अपनी माँ से बात करने पे भी कहता है कि मुझे माँ से बात ही नहीं करनी आती, मुझे समझ ही नहीं आती कैसे बात करनी, नहीं कहता ना, क्योंकि वो इतना क्लोज ताल्लुक होता है। अल्लाह अल्लाह ताला जो 70 माओं से भी ज्यादा है, जो हर हमारी जरूरत पूरी करने के लिए, हर हमारी बात को सुनने के लिए, और जिसने हमें सब कुछ दिया हुआ, जिसके साथ हमारा कब से ताल्लुक है, कब से रिश्ता है, जब अभी हमारे माँ बाप के साथ हमारा रिश्ता नहीं था, तब से उसके साथ हमारा रिश्ता है। माँ बाप तो हमारे बाद में बने ना, जिस वक्त हम दुनिया में हैं, हम जब रूहें भी थे तो तब भी हमारा अल्लाह से कनेक्शन था, उसी अल्लाह के साथ बात नहीं करनी आती, कितना पराया बना दिया, कितनी दूरियां हो गई, इतनी दूरियां कि बात ही नहीं करनी आती। कोई कह दे मुझे समझ ही नहीं आती फलां के साथ कैसे बात करूं। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आप मसलन कोई अजनबी बिल्कुल बैठ जाए आपके पास, अब वो आपको समझ ही नहीं आएगी मैं कैसे बात करूं, कि अब एक दो बातें करेंगे उसके बाद सोचेंगे क्या अब क्या बात करूं। और जब कोई प्यारे आते हैं तो फिर तो घड़ियां पता ही नहीं चलती किधर दौड़ी जा रही हैं, पूरी पूरी रात भी गुजर जाती है, बातें ही नहीं खत्म होती। क्या फर्क होता है, वो प्यारा है, वो उसके साथ एक ताल्लुक है, इसलिए वक्त का पता नहीं चलता। और जो अजनबी होता है ना, उसके साथ तो फिर वक्त काटना मुश्किल हो जाता है। अगर अल्लाह के साथ भी हम अजनबी हो गए ना, तो बहुत सोचने की जरूरत है, क्या चीज है जो हमारी सोचों में ऐसी है, किसने हमें अल्लाह से इतना दूर कर दिया। जो मेरा रब है, मेरा अल्लाह, अल्लाह मेरा है, ये नहीं ओह वो तो हमारी सुनता ही नहीं, आप दुआ कर दे, नहीं वो आपका अल्लाह है, कहीं मेरा रब, मेरा अल्लाह, ऐसा ताल्लुक होना चाहिए, ऐसे बातें होनी चाहिए, मेरा रब, किसी को बताना ना पड़े क्या मांगो, किसी को बताना ना पड़े क्या कहो, बस कहते ही चले जाओ, वक्त गुजरता जा रहा है, पता ही नहीं चला इतना वक्त गुजर गया। हम कहते हैं टाइम देख के दुआ करते हैं, हाँ 5-10 मिनट हो गए, हाँ इतनी लंबी दुआ, हम तो थक जाते हैं, तो दुआएं नहीं आती, बातें करो, बात करके भी समझ नहीं आती अल्लाह से क्या बातें करें, क्योंकि ताल्लुक नहीं है अल्लाह के साथ। अगर समझ नहीं आ रही ना, ताल्लुक नहीं है। अगर ये लग रहा है ना रब्बा का, उसका रब है उसका, ये तो नेक लोग हैं, ये तो बस इनके साथ अल्लाह की बड़ी कनेक्शन है, ये पहुंचे हुए हैं इनका, तो आपने भी तो बना दिया ना रब्बा का, फिर रब्बी तो ना बनाया ना, मेरा रब जितना उसका है मेरा भी है, मान से कहो मेरा रब। जब आप भी ऐसे कर दोगे ना अल्लाह को पराया, रब्बा का रब्बा को उनका रब है, उसका रब है, उसका रब है, तो फिर दूरियां और ही बढ़ती जाएंगी, फिर अल्लाह भी वैसा ही मामला करता है। तो हमेशा मान के साथ कहो मेरा रब है, कितने भी गुनाहगार हो फिर भी मेरा रब है। समझ आ गई बात? फदउ लना रब्बका, ए मूसा तू पुकारो ना अपने रब को, युखरिजना मिम्मा तुंबितुल्अर्ध, के वो निकाले ना हमारे लिए जो जमीन में वो जमीन उगाती है। अब देखो क्या मांग रहे हैं, सब्जी, ककड़ी, लहसुन, ये कहाँ से उनको चीजें पता चली? इसलिए कि जब मिस्र में थे तो यही खाते थे ना, और अल्लाह ने उनको मनोसलवा दिया, तो काला मूसा अलैहि सलाम ने आगे से क्या जवाब दिया? देखिए, जब उन्होंने पानी मांगा था, मूसा अलैहि सलाम ने पानी मांगा अल्लाह से, लेकिन जब वो उल्टी एक फरमाइश कर रहे हैं, उल्टी एक बात कर रहे हैं, तो मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह से दुआ नहीं की। मूसा अलैहि सलाम ने कहा अतस्तब्दिलूनल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, तुम बदलना चाहते हो उसको जो कमतर है बदले उसके जो बेहतर है, कमतर लेना चाहते हो और वो उसको छोड़ना चाहते हो जो बेहतर चीज है। क्या चीज बेहतर? मनोसलवा। कैसे था बेहतर? देखिए, एक बेहतरी नहीं थी उसमें, बहुत सारे फायदे थे। क्या फायदे थे? सबसे पहली बात तो यह है कि उसके लिए जरा भी इनको मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, ना वो कहीं उगाना पड़ रहा था, ना कहीं से जाके खरीदना पड़ रहा था, ना कोई पैसे चाहिए थे इसके लिए। देखिए, जब भी हमें फूड चाहिए होता है तो क्या मेहनत भी करनी पड़ती, कोई मुफ्त में तो नहीं मिलता ना। हम जाके फिर पे करते हैं, फिर कहीं से उठा के लेकर आते हैं, अगर हमें घर बैठे भी मिल रहा है। वरना क्या है, कोई उगाता है, कोई अगर पैसों का नहीं दे रहा तो फिर कहीं उगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर कोई फसल निकलती। तो मेहनत है ना, दोनों हालतों में मेहनत है। और इसमें मनोसलवा सामने आ रहा है और मुफ्त मिल रहा है, और बगैर मेहनत के मिल रहा है, रोज मिल रहा है, फिर भी ये उसको बदलना चाहते हैं इन चीजों के पीछे। और दूसरी क्या बात है, उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल फैक्ट थे, जो न्यूट्रिशन उसके अंदर थी मनोसलवा में, वो गोश्त है और वो जो मन है, वो भी ऐसी ड्रॉप्स हैं जो कि उसमें भी लज्जत भी है, मजा अपनी जगह है, लेकिन उसमें भी ताकत भी है, होलसम फूड है, बजाय इन चीजों के प्याज और लहसुन और वो। हम भी नहीं जैसे कभी कहते बोर हो गए हैं बस इस खाने को खा खा के, अब कोई और खाना चाहिए। बोरियत एक तो बहुत जल्दी हो जाती है, सब्र नहीं है। अब उन्होंने क्या कहा, जो मूसा अलैहि सलाम ने क्या कहा, जो बेहतर है उसको देकर अदना लेना चाहते हैं। ये अगर कोई आप में से लायक है ना, लायक से तो माशाल्लाह सारे ही लायक हैं, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि आप में से अगर कोई इतनी सी बस अतस्तब्दिलूनल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, इतनी सी सिर्फ इस बात को याद कर ले, पता है इसके अंदर बड़ा कुछ छुपा हुआ है। ये इतनी सी बात में आप पूरी आयत ना करें, सिर्फ इतनी बात को आप याद कर लें और फिर देखें कि कहाँ कहाँ हम भी बदलते हैं, हम भी चाहते हैं कि अदना मिल जाए, आला और जो खैर वाला है वो देखें। जिंदगी में हम इतनी दफा ये चाहते हैं और ऐसे सौदे करते हैं। आपको मिसालें देती हूँ, मसलन आप कुराने पाक सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उधर आपको कोई जॉब की ऑफर आ जाती है एकदम, तो क्या करते हैं, ये तो बाद में भी हो सकता है, इसका क्या है, ये तो चलता ही रहेगा, कोई बात नहीं लिसनर बन जाऊंगी, कोई बात नहीं ऐसे हो जाऊंगी, जॉब पहले कर लूं, जॉब तो नहीं मिलनी, कुरान तो मिल ही जाएगा, कुरान का कौन सा वक्त खत्म हो रहा है, इसकी कौन सी उम्र गुजरी जा रही है, जॉब की उम्र गुजर जाएगी, जॉब ले लो जल्दी। क्या किया, अतस्तब्दिलूनल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, आपको अल्लाह ने तौफीक दी कि आप हिजाब पहने, आप अबाया पहने, आप देखती हैं लोग जर्क बर्क लिबास पहने जा रहे हैं, आप कहती हाय मेरा दिल करता है काश मैं भी इस तरह से ही करती ना, क्या मैं बस इसके अंदर बैठी हुई हूँ और मैंने क्या पहना हुआ, और ये देखो आप क्या चाहते हैं, हाँ खैर दे के अदना लेना चाहते हैं। आपके पास अल्लाह ने हलाल रोजी के अंदर आपकी जरूरियात पूरी की हैं और आप लोगों के हराम से बने हुए महल देख देख के आहें भरते, कहते काश ये मुझे मिल जाए, ऐसा मेरे पास हो। आपको अपना जो खैर है वो नजर नहीं आता, वो अदना नजर आ रहा है, उस अदना की ख्वाहिश करते हैं, वो लेना चाहते हैं। जिंदगी में इतनी जगह ऐसी हैं, इतनी दफा ऐसे होता है, हमारे पास मनोसलवा तो नहीं है, लेकिन हम अल्लाह के इनामात, अल्लाह ताला का फजल, अल्लाह की दी हुई हिदायत, इस सब को देकर और घटिया चीजों का सौदा कर लेते हैं, घटिया चीजें लेके आ जाते हैं। फिर आप देखें, ये जो दुनिया की रंगीनियां हैं, दुनिया की चीजें हैं, इन सब को लेकर और आखरत बेच देते हैं। आखरत के लिए जो वक्त लगा सकते हैं, नेकियां कमा सकते हैं, वो सब वक्त किस लिए लगा देते हैं? दुनिया की हकीर चीजों के लिए। आप पढ़ रहे हैं बैठे हुए, आपका कोई, आपने कोई अपनी असाइनमेंट करनी है, आपने कोई टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपकी दोस्त है जो जाके सेल से बहुत जबरदस्त शानदार चीजें लेकर आ गई, आप क्या कहते हैं? हाय कि कितनी अच्छी रह गई ना, मैंने पता नहीं अपने सर पे क्यों ये मुसीबत ले ली, क्या मैं कोर्स करने बैठ गई। चाहते हैं कि आप अदना ले लें, हाँ, और खैर को दे दें। बहुत जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं, बहुत जगह पे आप देखिए, इसीलिए कह रही हूँ आप ये याद कर लें, ताकि जब जब मौका है तो अपने आप को रिमाइंड करा सके, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अदना ले रही हूं और आला दे रही हूं, खैर को दे रही हूं जो अल्लाह ने मुझे दी हुई है, और इसके बदले में ये ठीकरियां ले रही हूं। तो ये आयत का ये हिस्सा आपको सिर्फ इतने, इसको कन्फाइन ना करें सिर्फ फूड के उससे, बल्कि ये हिस्सा कि तुम अदना खाने की नहीं, सिर्फ अदना कम तर को बदले इसके जो बेहतर है, तुम लेना चाहते हो, तुम बदलना चाहते हो। बहुत दफा बदलेंगे हम, लेकिन जब ये आयत पढ़ ली तो फिर ये अपने लिए एक याद दहानी के लिए रखेंगे कि नहीं, अब से मैंने अदना नहीं लेना, मुझे जो खैर मिली है वो बेहतर है। और फिर देखें, ये हमें ये आयत सिखाती है, एक कौमी जो है ना, जब अल्लाह ताला उनको चुनता है किसी आला मकसद के लिए, ये बुरा नहीं है कि आप सब्जी खाना, कोई बुरा नहीं है, कोई लहसुन या दाल खाना अल्लाह की नियम थे, अल्लाह ताला ने कहा कुलू वशरबू, ये कोई बुरा नहीं है, लेकिन जब आपका मकसद बहुत बड़ा हो ना, तो फिर आप ये इतनी छोटी चीजों के ऊपर अपना दिमाग लगा रहे हैं, उसके लिए चाह रहे हैं, यानी ये उनकी मेंटेलिटी बता रही है कि उनका माइंडसेट क्या है। बात ये नहीं है कि ओ नहीं ये नहीं खाना चाहिए, देखो उन्होंने ये मांगा था, उन्होंने बहुत बुरा किया, नहीं, बात ये है कि उनका दिमाग किसमें लगा हुआ है, वो किस चीज को प्रायोरिटी बना रहे हैं, उनको अल्लाह ने क्या काम दिया हुआ और वो को क्या करने बैठे। हाय हम तो बोर हो गए, हाय हमसे तो नहीं अब सबर होता, ये तो ऐसे ही है जैसे, अच्छा आपको दो मिसाल देती हूँ, दो बच्चों की मिसाल है। आप अपने बच्चे को कहते बेटा पढ़ो, तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, बड़ा, यानी आप उसको देखना चाहती हैं बहुत आगे जाता है, वो कहता है आप मुझे ही पढ़ने को कहते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, और देखो फलां बच्चे खेल रहे हैं, और वो तो सारा वक्त खेले ही जा रहे हैं, और वो बच्चे फेल हो रहे हैं और ये पास होता जा रहा है, इसको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, रात को भी जागता है, दिन को भी पढ़ रहा है, बहुत काम कर रहा है, दूसरे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा कौन रहता है? आप अपने बच्चों को कभी कहते हैं बेटा पढ़ाई छोड़ो, बेटा खेलो बस, खेल खेल के ये जिंदगी है, कहते हैं कोई कोई माँ बाप नहीं ऐसे कहता, क्यों? इनको यहां पर अल्लाह ताला ने ट्रेन करना है किसी बहुत बड़े काम के लिए, इनकी ट्रेनिंग हो रही है, इन्होंने जब किसी ने बड़ा मकसद अचीव करना हो ना, तो वो ये इन चीजों में नहीं रहता, खाने क्या है पीने क्या, जैसे इस उम्मत का आज क्या मसला बन गया, क्या मसला है आज हमारा, खाना पीना बस, जिधर देखो बस खाने पीने का, अगर कोई दर्स रख लो उसमें खाने पीने के लिए, वो नहीं बुरा नहीं है कि आप किसी को खिलाएं, खिलाएं लोग, लेकिन क्या सोच पे क्या हावी होता है, कौन कौन सी डिशेस रखी, क्या करें, जो आने वाले हैं वो भी ये देख के आते हैं कि लंच लंच विल बी सर्व्ड और नॉट, लिखा हुआ है कहीं फ्लायर में कि लंच विल बी सर्व्ड, या ऐसे ही खाली दर्स है। फिर देखें औरत, मैंने अभी आपको बताया कि हम आज अपने दिमागों को बंद कर चुके हैं, क्यों, हम औरतें ही हैं, तो औरतें हैं तो क्या, ये औरतें कुछ नहीं और कर सकती, तो तब भी अगर अपने घरों को संवार लेंगी ना, आप दुनिया में नहीं लेके भी घूम सकते दीन को, अपने घर संवार लोगे ना, तो इन घरों से ही देखे उम्मत उठेगी, हर घर संवरेगा। तो जब लेकिन औरत का काम सिर्फ क्या रह जाए, हांडी रोटी हांडी रोटी हांडी रोटी, सारा दिन बस यही काम है, पहले ग्रोसरियां आ रही हैं, फिर खाने पक रहे हैं, फिर सर्व हो रहे हैं, फिर उठाए जा रहे हैं, फिर बर्तन धोए जा रहे हैं, फिर किचन साफ हो रहे हैं, तब जाके एक खाने का काम खत्म होता है, उसके बाद दूसरे खाने की फिक्र, फिर तीसरे खाने की फिक्र। बास घरों में तो दिन में 5 दफा खाने खाए जाते हैं, नाश्ता अलग, फिर चाय बन रही है, फिर लंच हो रहा है, फिर शाम की चाय है, उसके साथ भी कुछ होना चाहिए, फिर डिनर है। इतने खाने जिस घर के अंदर हो, वहां पे क्या उम्मत के लिए काम होगा? वहां पे तो अपने पेट के लिए ही जी रहे हैं। हुआ ना कि कुछ लोग कैसे जीते, खाने के लिए जीते, ईट टू लिव या लिव टू ईट। हम कौन से वाले, लिविंग टू ईट, हम जिंदा ही किस लिए, खाने के लिए बस खाते जाएं। क्या चटखा रहे हैं, कहाँ पे क्या मिल रहा है, बस ये चीजें हमारे, ये ही हमारी जिंदगी का महवर नहीं बन गई? और औरत के कितने घंटे किचन में लगते हैं, जहां पे औरतें खुद काम कर ली है ठीक है, फिर थोड़ा सा कम हो जाता है वहां पे खाने पीने का सिलसिला, जैसे इन मुल्कों में हमारे, हम 2 टाइम खा लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 टाइम कोई खाता होगा। जहां पे नौकर चाकर है वहां पे तो सारा दिन ही खाना ही चलता रहता है। तो क्या हमारी जिंदगी यही है? जब कोई उम्मत इन चीजों में बस लग जाए ना, तो वो तो बड़े काम नहीं कर सकती। अब वही बच्चा अगर उठ के कहे कि मुझे भी खेलना कूदना है, तो क्या वो बड़ा मकसद अचीव कर सकता है? उसको तो ना खाने की परवाह, ना पहनने की परवाह, ना नींद की परवाह, वो तो पढ़ता ही चला जा रहा है। क्यों? उसको बहुत बड़ी मंजिल है जो उसको पानी है। जिन्होंने ऊंची मंजिलें पानी होती है ना, वो हंडियां रोटियां नहीं करते रहते। आप चाहे कितना ही आप कह लें कि मुझे, मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं हुआ कुछ, जब आप वक्त कैसे निकाल सकते, मेरे पास टाइम नहीं, वक्त निकलेगा कैसे? जब सारा वक्त एक ही काम लगा हुआ है तो कैसे वक्त निकलेगा? जिस उम्मत की सारी औरतें इसी काम में लगी हुई हैं कि वो बस चैनल्स पे देखती रहे कौन सी रेसिपी नहीं आ रही है, अब इसको ट्राई किया जाए, अब वो लिख रहे हैं। जिस उम्मत के मर्द ये हो के वो कहेंगे हम तो कमाई करें कि हम ये दीन की खिदमतें करें, ये तो फारिग लोग करें, हमें तो कमाइयों के झंझट है। मर्दों को कमाइयों के झंझट, औरतों को खाने पकाने से फुर्सत नहीं, या खाने खाने से फुर्सत नहीं, तो फिर वो उम्मत क्या करेगी बताएं? क्या तरक्की करेगी, कैसे वो उठेगी? जिनकी आधी जो पॉपुलेशन है वो तो किचन की नजर हो गई है। अगर किचन एक तरफ सेट होता है तो फिर दूसरी एंटरटेनमेंट की चीजें शुरू हो जाती हैं। अब टीवी पे देखें क्या ड्रामे हैं, क्या फिल्में नहीं आ रही हैं, कौन सी क्या हो रहा है, ये बस जिनकी जिंदगी रह गई हो वो क्या उठेंगे और क्या दीन का काम करेंगे? और फिर उनके साथ होता क्या है वो भी आप देख लेना, इसका अंजाम फिर क्या होता है? आप सोचते हैं ना कि ये तो बड़े मजे आ रहे हैं, बड़ा फन हो रहा है, ये मजे करने के लिए नहीं अल्लाह ने उनको फिरौन की वहां से चुंगल से आजादी की थी कि ये मजे करें और बस अब बैठे और खाएं पिए और पिकनिक हो रही है, अब ये नहीं चाहिए, अब हमें वो चाहिए। इस बात पे गुस्सा किया जा रहा है यहाँ पे, इस बात पे नहीं कि वो क्यों वेजिटेबल क्यों मांग रहे हैं, और या फिर दाल खाना बुरा है या ये खाना बुरा है, ये नहीं है। उनको तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुलू वशरबू, खाओ पियो, लेकिन प्रायोरिटी मत बनाओ, ये जिंदगी नहीं है खाना पीना। कई आदमी कहते हैं वो ये खाना बनाओ ये खाना बनाओ, ओ कमाते हम किस लिए, खाने के लिए तो कमाते, ये है हमारी जिंदगी, हम कमाते ही इसलिए बस खाएं, और हम दुनिया में आए खाने पीने के लिए। तो देखो कैसे हम अपने आप को वेस्ट करते हैं, जब हम अपनी प्रायोरिटीज, जब अपना जिंदगी का मकसद क्या बना लेते हैं। और जब कोई कौम सब्र छोड़ देती है, वो ये नहीं देखती कि हमें आला मकसद अचीव करने हैं, हमारे ऊंची मंजिलें हैं जो हमारे आगे हैं, और वो किधर पड़ी होती है कि उनके लिए वो वाले खाने हम बनाते हैं, और हमारे तो माशाल्लाह जो देसी खाने हैं वो तो ऐसे हैं कि कई कई खानों में तो घंटों लगते हैं, पकाते ही जाओ, बस सुबह से शुरू होंगे और बस शाम तक ही पकेगा वो पकवान, वो उसमें हम सोचते हैं कितनी देर लगती है। और फिर एक नहीं खाना, अगर ये है तो फिर साथ ये भी हो, ये है तो फिर ये भी हो, फिर क्या मजा आएगा अगर फलान चीज ना हुई तो, और मीठे में क्या है फिर? ये है हमारा जिंदगी का। तो अदना उस वक्त देखें हमारा क्या होता है, हम अदना ले रहे होते हैं खैर के पीछे, क्योंकि जाहिर है फिर टाइम नहीं है, फिर टाइम कहाँ से आएगा फिर? पढ़ने का टाइम कहाँ से आएगा, कुछ सीखने का कहाँ से आएगा, किसी को कुछ सिखाने का कहाँ से आएगा, कोई खैर का काम आपने करना है उसका कहाँ से आएगा टाइम? टाइम तो नहीं है ना, फिर टाइम कैसे निकलेगा? ये पूजा पाठ पेट की इसको करने से निकलेंगे तो टाइम आएगा। तो उनसे कहा गया, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इहबितु मिस्रन फइन्न लकुम मा सअलतुम, ठीक है फिर जाओ किसी भी शहर में उतर जाओ, तुम्हें वहां पे मिल जाएगा ये जो तुम सवाल कर रहे हो। जैसे मैं क्या अल्लाह से मांगू ये तुम्हारे लिए चीजें, जाओ किसी भी शहर में जाओगे वहां पे मिल जाएंगी इसको। अब यहाँ पे मिस्र का वर्ड लाया गया, शहर के लिए तो और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन मिस्र क्यों कहा गया? उनको याद दिलाने के लिए कि फिर जो जहां की चीजें तुम याद कर रहे हो ना, फिर वहां की फिर वो और भी चीजें याद कर लो, वहां पे तो और भी बहुत कुछ था, फिर वो मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा जैसे यहाँ पे आजादी है, जैसे यहाँ पे तुम अब जा रहे हो तुम्हारे पर कोई जुल्म सितम नहीं है, तुम्हें इज्जत मिली भी है, वहां पे कैसी जिल्लतों के अंदर थे। तो जब मिस्र में उतरोगे ना तो फिर वैसी वैसे फिर मेहनत मजदूरी मुशक्कत ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि फिर जाहिर है ये दालें और ये जो वो मांग रहे थे लहसुन और प्याज, ये तो ऐसे तो नहीं मिल जाने थे, आसमान से तो नहीं गिरना था इन्होंने मनोसलवा की तरह। और फिर लगता ऐसे है तफासीर में है कि लगता ऐसे है कि शायद उन्होंने फिर इस मुतालबे से मतलब अपने आप को फिर वो कर दिया, वो उन्होंने फिर आगे नहीं मुतालबा किया, क्योंकि ये फिर कहीं गए नहीं किसी शहर में। वदूरी बता ले ही मुजिल्लत वल मस्कना तु। अब ये एक मॉरल, ये जो जितनी अभी बातें हुई है ना उनमें एक मॉरल लेसन बताया गया, कंक्लूजन जिसको कहेंगे इन सारी बातों का जो अभी तक हो रही है, इन्होंने ये किया ये किया। सुभान अल्लाह, आप देखेंगे ऐसे लग रहा है ना बार बार आ रहा है, हमने तुम्हें ये दिया तुमने ये किया, हमने ये दिया तुमने ये किया, हमने ये दिया तुमने ये किया, या ये आ रहा है ना, हमने तुम्हारे साथ क्या किया तुमने जवाब में क्या किया। ठीक, जैसे एक मोहब्बत की दास्तान है ना कि अल्लाह ताला की करम नवाजियों की हद नहीं है और इनकी नाशुक्रियों की हद नहीं है। जब कोई नेमत मिले तो उसके बाद उसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए कि इंसान और अल्लाह के आगे झुक जाए और इताअत में आगे बढ़े और दौड़ लगाए नेकियों के अंदर और अल्लाह को खुश करने की कोशिश करे कि उसने मुझे ये दिया और खुश करने की उसको कोशिश करे। उल्टा हो जाता है कि जब नेमतें मिलती हैं और गफलत छा जाती है और सुस्ती आने लगती है और इंसान अल्लाह से दूर होने लगता है। ऐसा ही है ना, कम ही लोग होते हैं जो नेमतों में अल्लाह को याद रखते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि खाओ पियो लेकिन देखो फसाद ना करना, वो खा पी के उसके बाद होता क्या, उसके बाद फसाद ही होता है, अल्लाह को ही भूल जाते हैं। तो उनके ऊपर जिल्लत मार दी गई इन सारी हरकतों के बाद जो इन्होंने की हैं, इनके ऊपर जिल्लत थोप दी गई। वल मस्कना, और मिस्कीनी, मस्कना से मुराद कम हिम्मती भी ली गई है कि यानी इनके अंदर कोई जैसे पावरलेस नहीं हो जाते। मस्कना सकना से है ना, सकना एक जगह सुकून करना, जैसे स्टेशनरी, बिल्कुल यानी कोई ताकत नहीं है, कि ताकत से मतलब ये नहीं कि फिजिकली कोई ताकत नहीं, यानी इतने दिल कम हिम्मत हो चुके हैं कि हौसला ही नहीं है कुछ करने का। और फिर फकीरी भी इसका माना लिया गया कि इनके ऊपर, इसके नतीजे में इनके ऊपर जिल्लत और मस्कनत थोप दी गई, मार दी गई, मुसल्लत कर दी गई। ये अल्लाह ताला की नाराजगी की निशानी है कि कैसे इन उस उम्मत को जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया कि फद्दलतुकुम अलल आलमीन, तुमको फजीलत दी जहान वालों पर, उनको जिल्लत मिल रही है, उनको मस्कनत मिल रही है, यानी वो ऐसे बिल्कुल यानी जमीन से लग गए। और जिल्लत मिलना, आप देखें कि किसी कौम को इसका मतलब अल्लाह ही की तरफ से उसकी जिल्लत के भी फैसले होते हैं। व तो इज्जु मन तशाओ व तो जिल्लु मन तशाओ, हम रीजंस ढूंढते हैं ना, क्या रीजन हो गया जिल्लत का, क्या हो गया कि उम्मत इस वक्त ऐसे हालों में है, क्या मसला हो गया ये। और फकीरी मस्कनत की हालत, और मिस्कीनी भी मस्कनत मिस्कीनी से भी है ना, मस्कना, यानी मिस्कीनी, फकरो फाका, और बिल्कुल इंसान का मोहताज सा हो जाना। आज उम्मते मुस्लिमा को देखें, दुनिया में कितने कंट्रीज हैं मुसलमानों के, लेकिन आपने देखा कि कहीं पे इज्जत नाम की चीज नहीं। फकीर हो चुके हैं वो, उनके फैसले दूसरे मुल्क करते हैं, वो अपने फैसले भी खुद नहीं कर सकते, उनकी हुकूमतें उनकी मर्जी से नहीं हो सकती, उनके बजट उनकी मर्जी से नहीं बनते, और हैं जो उनके फैसले करते हैं। क्या ये मस्कनत नहीं है? कर्जे लिए हुए, कर्जों के बोझ तले दबे हुए, ये मस्कनत नहीं है क्या? और जिल्लत तो ऐसी है कि उस बताने की जरूरत ही नहीं। पूरी दुनिया में आज रेफ्यूजी कौन है? कौन है रेफ्यूजी? कोई ईसाई रेफ्यूजी नहीं है, कोई यहूदी रेफ्यूजी नहीं है, कोई और नहीं, सिर्फ मुसलमान। पूरी दुनिया के अंदर दर बदर हुए पड़े। जब उम्मतों के फैसले होते हैं ना, तो इंडिविजुअल्स के नहीं है, वो देख के होते कि वो इंडिविजुअल कैसा है, पूरी की पूरी उम्मत का फैसला होता है। ठीक है, तो ये नहीं होता कि फलां वो तो नमाजी है, लोग क्या वो बुरे हैं, वो नहीं। जिल्लत फिर सबके ऊपर ही आती है। आज किसी मुल्क में भी मुसलमान है ना, उनकी कोई इज्जत नहीं है, कोई उनको अच्छा नहीं समझता, कोई वजह ही होती है ना इसके पीछे। इज्जत लोग नहीं देते, इज्जत के फैसले भी ऊपर से उतरते हैं, तो क्यों नहीं उतर रहे? और मस्कनत क्यों है इतनी? क्यों है फकीरी? जी फलां का कसूर, वो हुकूमत आई वो ले गई खा गई, वो फलाने ने कर दिया वो। तो यहां तो कुरान कुछ और ही बता रहा है। बनी इसराइल में कौन से करप्ट हुक्मरान आ गए थे? हाँ, किसने खा लिया, किसने कर्जे ले लिए, किसने क्या कर दिया, उन पे क्यों फिर जिल्लत और मस्कनत आ गई? सोचते नहीं? वबा उबे गदब मिन अल्लाह, और वो लौटे अल्लाह के गजब के साथ, ऐसे ही नहीं मगदूबी अलैहिम हो गए जी वो, और किसी और के किसी बादशाह के गजब में नहीं आए, अल्लाह के गजब में आ गए। और उनके ऊपर जो हो चुकी वो तो हो चुकी, और आज तक वो इसके अंदर है। आपने देखा कि हिटलर ने उनके साथ क्या किया, फिर उसके बाद भी आज तक दूसरी कौमों के मोहताज हैं अपने सर्वाइवल के लिए, उनकी तो आज तक शामत है ही। लेकिन अब जो उनकी जगह पे, जैसे आप अपने घर में ना अपने बड़े बेटे को कोई काम देते हैं, वो इतना उल्टा करता है, इतना उल्टा करता है काम के, आपको बहुत गुस्सा आता है जब आप देखते हैं कि इसने तो सारा जो मैंने कहा उससे उलट कर दिया। अब आप कहते हैं तुम्हें मैंने कोई, अब ये जिम्मेदारी का काम नहीं देना, कोई वो नहीं, घर का इंचार्ज बना के जाना। अब इंचार्ज ये छोटा बेटा है, ये करेगा आप काम। इस तरह से पहले उम्मते मुस्लिमा जो थी वो यहूद थे, बनी इसराइल थे, वो पहले इमामत के मनसब पर फाइज थे, फिर अल्लाह ताला ने उनसे ये मनसब लेकर उम्मते मुस्लिमा, ये जो है नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत, इसको ये मनसब दिया। अगर ये भी वही काम करेगी तो याद रखिए एक बात, अल्लाह के कोई चहीता नहीं है कि वो चहीते नहीं थे, ये बहुत चहीते हैं, क्योंकि ये तो उम्मत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनकी उम्मत है, ये ज्यादा चहीते हैं। किसी की उम्मत बन जाने से चहीते नहीं हो जाते। अगर तुम्हारे काम वो ही होंगे जो उनके थे, तो अल्लाह की सुन्नत तो नहीं बदलती, अल्लाह के वो भी बंदे थे, अल्लाह ने उनको भी वैसे ही पैदा किया जैसे तुम्हें पैदा किया। तुम्हारा इसके अंदर कौन सी बड़े कारनामा था कि तुम इस उम्मत में पैदा हो गए? तुम उसमें भी पैदा हो सकते, तो ये तो कोई कारनामा ना हुआ, इसके लिए तो आपने कोई मेहनत नहीं की। अल्लाह ने तो देखना है कि जिस उम्मत में हो तुम कर क्या रहे हो, हमारी प्रायोरिटीज आज क्या है, कोई हमने सोचा भी है इस चीज को, या ये कोई हमारी फिक्र में भी है, या ये कोई हमारा मकसद भी है कि हाँ हमारे ऊपर जिम्मेदारी वो दी गई जैसे उनके ऊपर दी गई थी। हमारा एक मकसद है कि अब कोई पैगंबर नहीं इस दुनिया में आना, अब ये काम दीन का ये इस उम्मत के अफराद ने करना है, ये तो किसी को पता ही नहीं। आप किसी से पूछे जाके इस उम्मत के किसी फर्द से, जिसने कुरान ना पढ़ा हो, जिसने ना समझा हो, जरा उससे पूछेंगे कि आपका मकसद हयात क्या है? कोई पता नहीं, कोई इसके लिए जी नहीं रहा। जब कोई लॉस्ट ही हो जाए, जिसने दूसरों को पैगाम देना था, उसको तो खुद ही नहीं पता कि है क्या पैगाम, फिर उसको तो फिर जोर से थप्पड़ पड़ता है ना कि देखिए ना, आपने घर का इंचार्ज जो बड़े बेटे को बनाया, तो आप उसी से आके पूछते ना तुमने क्या किया, दूसरे से तो नहीं पूछते। तुम्हें मैंने इंचार्ज बनाया था, तो सख्ती किससे की जाती है, सजा किसको दी जाती है? उसको। इसी वजह से आज लोग कहते हैं ना, दूसरे कैसे इतने ऐशो आराम है, मुसलमानों के साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? ओ भाई, क्योंकि मुसलमान तुझे ही इमामत का मनसब दिया गया था, तुम अपने सबक को भूल गए हो, तुम्हें मार ज्यादा पड़ेगी। उनको तो नहीं कुछ, उन तक तो पहुंचाना था, उनको तो ये मनसब नहीं मिला। हम इसी में खुश होते रहते, जैसे वो यहूदी खुश होते थे, हमें देखो हमें इतनी फजीलत मिल गई, वो देखो हमें किस तरह अल्लाह ने चुन लिया। वो चुन लिया तो आगे क्या किया? ऐसे ही हम आज खुश होते, हम तो चुनी हुई उम्मत हैं, हम तो फलां हैं, अपने कसीदे सुन लो तो कलाबे मिलाते हैं यहां आसमान से जमीन तक और कहां तक। और काम क्या है? जलील हो रहे हैं पूरी दुनिया में। ये हमारे लिए आंखें खोलने के लिए काफी है आयात। समझ आ समझना कोई चाहे ना तो बहुत कुछ है समझाने के लिए, ये क्यों अल्लाह का गजब, क्यों जिल्लत है, क्यों मस्कनत है। ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله। और ये इसलिए, किस लिए? ये इसलिए नहीं कि उन्होंने प्याज लहसुन मांग लिया था, ये ना कोई समझे, ये इसलिए। अब ये रीजन बताया जा रहा है, चार यहां पे रीजंस बताए गए हैं जो कंक्लूजन है। ये इसलिए कि कानू यकफुरून बी आयात अल्लाह की आयात का कुफर करते थे। वो कैसे कुफर करते थे? उन्होंने तो नहीं कहा था हमें, हम नहीं मानते। आगे आएगा वो उन्होंने क्या किया था अल्लाह की आयात के साथ भी, लेकिन उनका ज्यादा जो था ना क्राइम, वो ये था कि अमली कुफर करते थे। यानी अमल से नहीं मानना हमने, हमने कह भी दें अगर कि भाई हाँ अच्छा ठीक है, वो तौरात ले आए, हमने मान ली तौरात, ले अमल नहीं हम करेंगे। وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, और वो कत्ल करते थे नबियों को बगैर हक के। ये हक नहीं था लेकिन वो कत्ल कर देते थे उनको। आपको पता है इनके पास इतने नबी होते थे, यानी एक वक्त में एक से ज्यादा नबी होते थे एक जमाने में, लेकिन ये उनको ऐसे कत्ल करते थे जैसे कोई बात ही नहीं। और आपको पता है कि कयामत के दिन सबसे सख्त अजाब उसको होगा जिसने किसी नबी को कत्ल किया। और इन्होंने जकरिया अलैहिस्सलाम को हैकले सुलेमानी में संसार कर दिया था, इन्होंने यहया अलैहिस्सलाम का सर काट के ट्रे में रख के बादशाह ने अपनी महबूबा को पेश किया, पैगंबरों के साथ इन्होंने ऐसा किया, कोई छोटी बात है। और अपनी तरफ से तो ईसा अलैहिस्सलाम को भी सूली चढ़ा चुके हैं, इनके अपने दिमागों के अंदर तो यही कि हमने तो उनके साथ भी ये कर दिया, इनको इतनी शर्म नहीं। तो इन्होंने कोई एक पैगंबर नहीं, बहुत कई 100 पैगंबरों को कत्ल किया। ऐसे नहीं जिल्लत और मस्कनत इनके ऊपर, देखें जिल्लत की तो इंतहा आज तक इनके ऊपर ये है कि ये जो जो इनका किबला था वो सारा गिर गया, सिर्फ एक दीवार रहती जो जो, जो जिसको जो गिरिया जिसके आगे करते हैं और जिसको आगे खड़े होके ये ऐसी अपनी तौरात पढ़ते हैं, आगे पीछे आपने कभी देखा होगा पिक्चर्स में आगे पीछे हिलते जाते हैं, आज तक इनका किबला नहीं बन सका। इनका ये है कि ये हम पूरा बिल्ड कर लें लेकिन एक दीवार बस रह गई। इबरत है ये हमारे लिए, इबरत। आज तक ये खुद नहीं खड़े हो सके दुनिया के अंदर किसी के करने पे, और वो भी कुराने पाक में है कि ये कभी नहीं इनके ऊपर से ये हट सकती, ये अगर खड़े भी होंगे तो किसी के सहारा लेके खड़े होंगे। तो वो सहारे लिए में उन्होंने, तो ये आसान नहीं होता फिर कि इंसान जब जब कोई उम्मत इस तरह की हरकतों पे उतर आए तो फिर वो कहीं दोबारा वो मकाम हासिल कर सके। नहीं, ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون, और फिर तीसरा इनका जुर्म ये है कि वो नाफरमानी करते थे और वो हद से निकल जाने वाले थे। उन्होंने तो नाफरमानी की, आगे भी उनकी बातें आ रही नाफरमानी की जो उन्होंने करते रहे, और आपको और मुझे पढ़ पढ़ के भी उनके ऊपर गुस्सा भी आता है कि कैसे लोग थे ये, लेकिन अभी अपनी नाफरमानियों को देख ले, फिर हम कहते हैं हम कैसे, हमारे ऊपर क्यों ऐसे, अल्लाह हम तो तेरे मानने वाले हैं। लोग मुशरिक, वो जो हमारे साथ जिन्होंने आजादी हासिल की, वो मुल्क कहाँ से कहाँ पहुंच गए, आज वो किधर खड़े हैं और हम किधर। अल्लाह अकबर, ज़ालिका बिमा असऊ, वो नाफरमानी करते थे, वो हद से निकल जाते थे नाफरमानी में, नाफरमानी में भी हदें क्रॉस कर देते। आज आप देख लें, आप अपने बाजार देख लें, आपको पता चलेगा कितनी अल्लाह की नाफरमानी है। आप अपनी शादियां देख लें, फिर देखें कितनी अल्लाह की नाफरमानी है। आप अपनी रिश्तेदारियां देख लें, उनमें कितनी अल्लाह की नाफरमानी है। आप अपने कोई गम का मौका देख लें, उसमें देख लें कितनी अल्लाह की नाफरमानी है। आप अपने मुल्क के निजाम देख लें, उनमें कितनी अल्लाह की नाफरमानी है। आप अपने कारोबार देख लें, जॉब्स देख लें, कहां कहां नहीं हो रही। आप अपने हाल हुलिये देख लें, आप अपने त्यौहार देख लें, किधर नहीं हो रही। आप अपने मीडिया उठा के देख लें, आपको लगता है ये मुसलमान है? यानी नेकी तो दूर की बात है, आपको ये भी लगता है मुसलमान भी है कि नहीं है? फिर हम कहते हैं हमारे पर क्यों है जिल्लत। आप कोई चीज खालिस लेने जाए, आपको मिलती नहीं। नाफरमानी और उसमें भी हद से निकल जाना, जुल्म की भी इंतहा हो जाना। आप विरासत देख ले, किसी को भी कोई विरासत के मुताबिक, अल्लाह का कानून क्या है, वी डोंट केयर, होते फिरे होंगे। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया तिलका हुदूद अल्लाह, अल्लाह की ये हदें हैं, इनको मत तोड़ना। हमें क्या, हदें तोड़ तोड़ के जा रहे हैं हम, हर घर में हद तोड़ी जा रही, कोई परवाह है किसी को? फिर हम कहते हैं हमारे ऊपर रहमतों के फैसले क्यों नहीं होते, और जुल्म की इंतहाएं हैं, इंतहाएं हैं। यतीम का माल देखें कैसे खाया जा रहा है, कैसे कमजोरों के ऊपर जुल्म हो रहा है, कैसे कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई अदल इंसाफ नहीं, कोई हद से निकल जाते हैं, हद से। तो गुनाहों में जब हद से निकलते हैं ना, तो फिर अल्लाह की कोई रहमत के फैसले तो नहीं आते। अय्याशियां कितनी ज्यादा है, गैरों के त्योहार और गैरों के तरीके पसंद है, उनको सीने से लगा रहे हैं, और इस्लाम के तरीके क्या है, ये तो बैकवर्ड है, उनको हकीर समझ रहे हैं। क्या हदों से निकला नहीं जा रहा, असाऊ नाफरमानी नहीं हो रही? और ये कोई एक मुल्क की नहीं मैं बात करी, एक लोगों की नहीं बात करी, ओवरऑल ही देखे हम मुस्लिम उम्मा में, क्या यही नहीं हो रहा? ये चार रीजंस हैं। उन्होंने तो कत्ल किया अंबिया को, आप कहते हैं हमारा तो ऐसा कुछ नहीं मसला। आपको पता है अंबिया के वारिस कौन है? हदीस में आता है अंबिया के वारिस उलामा होते हैं। उलामा को कैसे कत्ल किया जाता रहा, ये भी हमें पता है। फिर उसके बाद बताएं कि कौन सी चीज है जो कि रह जाती है,